कल की तारीख में 8/61 की वाणी का क्लैरिफिकेशन चल रहा था। तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी, ये ड्रामा बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है। कैसे? बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। कैसे बननी ना है? 63 जन्मों में हमने जो पाप और पुण्य किए हुए हैं, वही पाप और पुण्यों की रील संगम युग में रिपीट होती है। जो अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा पुरुषार्थ चलता है, खराब कर्म किए हैं तो पुरुषार्थ भी खराब हो जाता है। तो ड्रामा बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल पहले माफिक होती है, ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराता है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध नहीं मिल सकती, और पुरुषार्थ जरूर करना पड़ता है। कोई कोई कहते हैं हम पुरुषार्थ क्यों करें जब 5000 वर्ष का ड्रामा सारा नुदा हुआ है। लेकिन नुदा हुआ है, हमें पता तो नहीं है। 83 जन्मों की बात ड्रामा में क्या नुदी हुई है वो हमको पता नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ को आगे रखना पड़ता है। वो पुरुषार्थ भी तुम सहज करते हो क्या? दुनिया वाले चाहे भक्त हो, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के वो भक्त हो, उनके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन तुम पुरुषार्थ सहज करते हो। क्यों सहज करते हो? मान लो बाबा की याद का पुरुषार्थ ही है, तुम्हारे लिए सहज होता है और सारी दुनिया के लिए कठिन है। क्यों कठिन है? एक तो तुमको समझाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है, मुश्किल को सहज करने वाला गाया हुआ है। दूसरी बात, जो निराकार को याद करने वाले हैं वो क्षिप्र गति वाले तो होते हैं, लेकिन उनको कठिनाई बहुत होती है, हठयोगी होते हैं, खींच करके बिंदु को याद करते हैं। और तुम सहज सहज याद करते हो, क्योंकि प्यार बिंदु से पैदा नहीं होता। प्यार और देश, दोस्ती और दुश्मनी, ये शरीर के साथ होती है या बिंदु के साथ होती है? तो शरीर होगा तो प्यार भी पैदा होगा। सुप्रीम सोल बाप ज्योतिबिंदु जब तक शरीर में ना आए और उस शरीरधारी की पहचान ना हो, तब तक उससे प्यार ऑटोमेटिक नहीं पैदा हो सकता। और जब प्यार पैदा हो जाता है तो याद करना भी सहज हो जाता है। तो बोला, तुम पुरुषार्थ भी सहज करते हो। कल्प पहले में सर, कल्प पहले भी तुमको सहज सहज पुरुषार्थ कराया था। पुरुषार्थ वालों की चलन से तुम समझ सकते हो, तब तो ग्रुप देख करके ऐसा समझाने वाला देते हैं कि अच्छा ग्रुप है तो उसको समझाने वाला भी अच्छा दिया जाना चाहिए। बहुत हैं जिनमें न ज्ञान है न योग है, ज्ञान की ओर आकर्षण ही नहीं, ज्ञान की गहराइयों में जाने की तमन्ना ही नहीं। ज्ञान माने जानना, तो जिनमें जानने के प्रति जिज्ञासा ही नहीं है, क्यूरियोसिटी ही नहीं है कि परमात्मा बाप कौन है, वो त्रिमूर्ति शिव की तीन मूर्तियां कौन है, वो फिर योग कैसे लगाएंगे। पढ़ाने वाला बाप तो अच्छी रीति जानते हैं कि ये कैसा पुरुषार्थी है, कितनी बेहद की विशाल बुद्धि बनाते हैं। नशा रहना चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते क्या, हमको कोई देहदारी गुरु नहीं पढ़ाने वाला है, हमको पढ़ाने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव कोई साधारण तन में आकर के पढ़ा रहा है। ये नशा रहना चाहिए, हम किसके बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, सिर्फ पिता के बच्चे नहीं है, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। ये खासियत है, दुनिया में बाप होगा टीचर होगा, बाप टीच भी करता होगा लेकिन सदगति करने वाला सदगुरु फिर भी दूसरे को बनाना पड़ता है, वो तो भक्ति मार्ग की बात है। यहां तो बाप भी वही है, आत्मा को जन्म देने वाला, आत्मा जन्म तो नहीं लेती लेकिन आत्मा को अपनी पहचान तो होती है, तो आत्मा को अपनी पहचान होना कि मैं आत्मा अमुक पार्टधारी हूं, यही आत्मा का जन्म हुआ। तो बाप भी है, टीचर भी है, समझाने वाला भी है। जैसे टीचर का काम होता है प्रोज और पोएट्री को क्लैरिफाई करना, तो वो टीचर बनकर के परमात्मा की जो वाणी ब्रह्मा के मुख से निकलती है उसको क्लैरिफिकेशन भी देता है। दुनिया में तो टीचर दूसरे होते हैं, बाप दूसरा होता है, बच्चे दूसरे होते हैं, यहां तो तुम भगवान के बच्चे भी हो और भगवान तुमको पढ़ाते भी है। कोई नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ने में दिल नहीं लगती है तो फिर भाग जाते हैं। कौन भाग जाते हैं, जिनकी दिल पढ़ने में पढ़ाई में नहीं लगती है वो फिर भाग जाते हैं। भगवान समझते हैं ये हमारा बच्चा नहीं है, किसके लिए, जो भाग जाने वाले हैं उनको भगवान समझते हैं ये हमारा बच्चा नहीं है। तुम देखते हो भगवान के बच्चे थे, पढ़ते थे फिर भाग गए, फिर समझ में आता है तो पढ़ने लग पड़ते हैं, फिर योग में अच्छी रीति रहे तो योग में ऊंचा चढ़ जाने के कारण ऊंच पद भी पा सकते हैं। 8 जनवरी 68 की वाणी का चौथा पेज, ऊंच पद पाने वाले समझेंगे बरोबर हमने बहुत ही टाइम वेस्ट किया भाग जाने के कारण, बीच में गैप देने के कारण हमने बहुत टाइम वेस्ट किया, ऐसा स्कूल हमने छोड़ दिया। कैसा स्कूल, जहां भगवान स्वयं बैठ करके पढ़ाते हैं। मैं कितना नीच हूं, पश्चाताप होगा। अब तो जरूर फिर बाप से बरसा लेंगे, बाबा बाबा कह के रोमांच खड़ी हो जानी चाहिए, बाबा हमको ये पद प्राप्त कराते हैं। कौन सा पद, जब यह पद प्राप्त कराते हैं कहते थे बाबा तो किसकी तरफ इशारा करते थे, लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा करते थे कि बाबा हमको यह पद प्राप्त कराते हैं, यह पद मन लक्ष्मी नारायण जैसा हमको बनाते हैं, हम कितना भाग्यशाली हूं। घड़ी घड़ी बाप की याद रहे, डायरेक्शन पर चलते रहे तो बहुत उन्नति हो सकती है। उनको सभी बहुत रिगार्ड दे देंगे, किनको? जो डायरेक्शन पर चलेंगे। किसके डायरेक्शन पर? इस दुनिया का जो डायरेक्टर है, जो पर्दे के पीछे सदैव रहता है, इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अगर ये बुद्धि में बैठ जावे कि इस वर्ल्ड ड्रामा का जो ऊंचे ऊंचे डायरेक्टर है वो हमको पढ़ाता है, और हम पढ़ रहे हैं, तो उनको सभी बहुत रिगार्ड दे देवे। अच्छे सर्विस करने वाले की चाकरी भी करनी चाहिए। समझते हैं हम तो इतनी अच्छी सर्विस नहीं कर सकते, हम इतना तन मन धन समय संपर्क और संबंधियों को स्वाहा नहीं कर सकते। तो अंदर से जब समझते हैं कि हम इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते, तो जो अच्छा पुरुषार्थ करने वाले हैं उनकी क्या करना चाहिए? चाकरी भी करना चाहिए। इसमें अहंकार फिर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छी सर्विस करने वाले सदैव ऊंच पद पाते हैं। जो अच्छी ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकते वो नीचे चले जावेंगे, माला का मणका नीचे उतर जावेगा। समझना चाहिए, ये ऊंच पद पावेंगे, हम दास दासियां बनेंगे, तो ऐसी सर्विस करने वालों का रिगार्ड भी रखना चाहिए ना। अभी अगर रिगार्ड नहीं रखेंगे, उनका डिसरिगार्ड करेंगे, किनका? जो जास्ती सर्विस करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, सर्विस का अच्छा रिजल्ट निकालते हैं, अगर उनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो और ही कम पद पावेंगे। बाप कहते हैं पढ़े के आगे अनपढ़ी भरी डूबेंगे। कौन सी पढ़ाई? जो ईश्वर आकर के स्वयं पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं, उस पढ़ाई को पढ़ने वालों के सामने जो न पढ़ने वाले हैं, भाग जाने वाले हैं, पढ़ाई को रिगार्ड न देने वाले हैं, वो फिर उनके दास दासी बनते रहे, बरीड होते रहेंगे। देह अभिमानी को कहा जाता है असुर। क्या? कौन सा देह अभिमानी बताया? जो ये जानता है कि हमसे ऊंच पद पाने वाले हैं, हमसे जास्ती सर्विस करने वाले हैं, फिर ऐसी अच्छी सर्विस करने वालों का भी डिसरिगार्ड करते रहते हैं। ऐसे देह अभिमानी को क्या कहा जाता है? असुर, राक्षस। दैवी गुणों की धारणा हो नहीं सकती उनको। क्या? पहले से बता दिया, ऐसों को फिर दैवी गुणों की धारणा नहीं हो सकती, असुर के असुर ही बने रहेंगे। तुम्हारा चेहरा तो बहुत ही फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अतीन्द्रिय सुकूनों से पूछो जिनको भगवान पढ़ाते, कितना पढ़ाई पर अटेंशन और श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पर तो चलते ही नहीं है, मानव मत पर ही चलते हैं। तुम्हारी योग ताकत से विश्व भी पवित्र बनता जाएगा। क्या कहा? योग बल से क्या मिलता है? विश्व की बादशाही मिलती है। तो जिनको विश्व की बादशाही मिलती होगी उनमें योग बल के वाइब्रेशन से भी तो बहुत तीखे होंगे। वो वाइब्रेशन से ही दूसरों की बुद्धि को घुमा सकेंगे, इतनी शक्ति आ जाएगी। तो विश्व पवित्र होता जाएगा, योग से ही तुम सृष्टि को पवित्र बनाए रहे हो। क्या कहा? इन्हीं का ज्ञान से तुम सृष्टि को पवित्र बनाए रहे हो, भाषणबाजी से सृष्टि को पवित्र बनाए रहे हो, बागदौड़ की सेवा करने से सृष्टि को पवित्र बनाए रहे हो। नहीं, सृष्टि पवित्र कैसे बनेगी? योग बल के, योग बल के वाइब्रेशन से सारी सृष्टि पवित्र बन जाएगी। तो कमाल है ना, गोवर्धन पर्वत को दिखाते हैं ना, छोटी अंगुली के ऊपर उठाया, क्या पर्वत का नाम दिया है? गौ। गौ किसको कहा जाता है? वो दुनिया वाले तो जानवर गऊओं को गऊ समझते हैं, गौशाला खोलते हैं, कितना दान करते हैं। अब जानवर गऊओं की तो बात नहीं, भगवान तो जब इस सृष्टि पर आते हैं तो खास भारत में जो कन्याएं माताएं होती है वो ही इतने गऊ की तरह सहज स्वभाव वाली होती है कि उनको जीवन में जिस खूंटे से बांध दिया जाता है सारा जीवन उसी परिवार में बिताती है। डाइवोर्स वाली बात नहीं। तो ऐसी सीधे सच्चे स्वभाव वाली कन्याओं को, माताओं को क्या कहा जाता है? गौ स्वभाव। कहते हैं भगवान ने गऊ चराई, कोई घास फूस थोड़े खिलाई, गीत बनाए दिए हैं, घास खाए गऊए, दूध पिए ग्वाल, माखन मिश्री मदन गोपाल। माना माना कृष्ण की सोल ने जो मनन चिंतन मंथन किया है, जुगाली की है, वो फर्स्ट क्लास मंथन किया है। कृष्ण के मुकाबले गोपों ने जो मनन चिंतन मंथन किया है वो थोड़ा उतनी कोटि का नहीं है। और कन्याओं माताओं रूपी गऊओं ने जो मंथन किया है, जो जुगाली की है, वो घास फूस की दिखा दी है। किसने? भक्तों। भक्त जानते हैं कि घास फूस से ही दूध बनता है। ऐसी गऊए जो घास फूस खा के साधारण मंथन करके ऐसा सहयोग देती हैं, जिस सहयोग की छोटी सी अंगुली से बड़ा पहाड़ उठाया जा सकता है। कौन सा पहाड़ नाम दिया? गौवर्धन पहाड़। वो गऊओं की संख्या बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाती है? यज्ञ के आदि में गऊओं की संख्या कितनी थी? है 300-400। और लास्ट में जब प्रत्यक्षता होगी तो संख्या कितनी हो जाएगी? 16,108। तो पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा। वो गोवर्धन पहाड़ एक छोटी सी उंगली के द्वारा कंट्रोल किया गया, छोटे से सहयोगी द्वारा, छोटे से पुरुषार्थी के द्वारा वो कार्य संपन्न कर दिया गया। तो गाते हैं, गोवर्धन पर्वत छोटी सी उंगली पर उठाया, इसे छी छी विश्व को जिन्होंने पवित्र बनाया है उनकी ये निशानी है। क्या कहा? ये दुनिया कैसी बन गई? सारी दुनिया में गंद बढ़ता जा रहा है। कैसा गंद बढ़ता जा रहा है? जैसे कुत्ते बिल्ली जानवर गंद करने वाले होते हैं, ऐसे मनुष्य भी जानवर मिसल बन चुके हैं। जानवरों का न कोई मां होती है, न बहन होती है, न बेटी होती है, उनको क्या कहा जाता है? जानवर। ऐसी जानवरों की दुनिया बन चुकी है। क्या बोला मुरली में? ऐसे ऐसे केसेस हैं, मां मां अपनी भांजी को नहीं छोड़ता, बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ता, चाचा अपनी भतीजी को नहीं छोड़ता, भाई अपनी बहन को नहीं छोड़ता, इतनी कुदरती होती जाती। और अंत तक जब तक दुनिया का विनाश हो, ये गंध बढ़ता ही जाएगा। तो बोला, ऐसी छीछी विश्व को जिन गऊओं ने पवित्र बनाया है, उनकी ये निशानी है। क्या? गोवर्धन पहाड़, तुम कितने थोड़े हो। जिस समय ये वाणी चली है, उस समय सरेंडर हैंड से बहुत थोड़े थे। कब की वाणी है ये? वाणी किस समय की है? जब बाबा जीवित थे, 8 जनवरी 1968 की। माना बाबा के शरीर, ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने से 10 दिन पहले की वाणी है। उस समय तो थोड़े ही थे। महारथी राजाई पद पाने वालों की ताकत है जो योग में टिके रहते हैं, बाकी तो प्रजा है। क्या कहा? राज परिवार में कितने आवेंगे? 16,108। ये राज परिवार की माला है। उनमें बहुत से ऐसे होंगे जो प्रिंस प्रिंसेस बनकर के रह जाएंगे, राजा ही नहीं पावेंगे। फिर 108 ऐसे भी होंगे जो अनेक जन्मों राजा ही पावेंगे। और फिर उनमें 8 ऐसे भी श्रेष्ठ हैं जो अनेक जन्मों तक राजाओं के भी राजा बनते रहे, सम्राट जिनको कहा जाता है, महाराजा। बाकी तो सब प्रजा है। तो प्रजा कितनी हो गई है? 9 लाख हो गई प्रजा पहले जन्म में, और 16,000 जो हैं वो हुए राज्यधारी, राज्य को चलाने वाले महाराजा के सहयोगी। तो ये सेना है ना, कौन सी? जो 16,000 गोप गोपिकाएं दिखाई गई हैं, वो सब क्या हुई? वो हुई मिलिट्री, रूहानी मिलिट्री, शिव शक्ति सेना। इसमें कमांडर भी हैं, कैप्टन भी हैं, मेजर्स भी हैं, कर्नल आदि सभी चाहिए ना। तो ये है रूहानी मिलिट्री। इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन बताया? मुरली में रूहानी मिलिट्री का मार्शल बताया है शंकर को, विष्णु को, ब्रह्मा को मार्शल नहीं बताया। मार्शल ला लागू होता है ना, तो सारी सत्ता मार्शल के हाथ में आ जाती है। बाबा सब बता सकते हैं, कौन कमांडर है, कौन कैप्टन है, कौन मेजर है, कौन कर्नल है, और कौन कौन सिपाही है। तुम अपना अपने आप भी निकाल सकते हो सर्विस के बैलेंस से। तुम्हारी ये सच्ची सच्ची सेना है। क्या कहा? तुम हो रूहानी वॉरियर्स, तुम रूहानी वॉरियर्स की ये सच्ची सच्ची सेना है। क्या नाम है इसका? शिव शक्ति पांडव सेना। ये सेल्वेशन आर्मी है, सारे विश्व को सेल्वेज करके पार लगाएगी। और बाप इस सेल्वेशन आर्मी का खिवैया है। सेना का कोई बड़ा जहाज होता है ना, तो उसका कोई खिवैया भी होता है, ड्राइवर। तो उस बड़े जहाज का ड्राइवर कौन हुआ? स्वयं बाप। बाप है खिवैया और हम आत्माएं हैं उसमें बिठैया। गायन भी है, नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। ये चंद्रकांत वेदांत जहाज ऐसा होगा कि जिसमें लोढ़े तो बहुत आवेंगे माया के, लेकिन वो जहाज डूब नहीं सकता। इसलिए भक्ति मार्ग में इस जहाज का गायन है। क्या गायन है? शंकर चाप जहाज जेही चढ़े उतरे पार नर। क्या? शंकर जी का शरीर रूपी धनुष एक जहाज के समान है, जिसका आधार लेकर के मनुष्यात्माएं इस संसार रूपी नैया से पार चली जाएंगी। सिखों में फिर गायन कर दिया है नानक चाप जहाज। क्या? उन्होंने सदगुरु किसको माना है? उन्होंने गुरु नानक को सदगुरु मान लिया। वास्तव में नानक की बात नहीं है, गुरु नानक भी उस निराकार की तरफ इशारा करते हैं। जो निराकार सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आता है तो शंकर में प्रवेश करके सारा कार्य संपन्न करता है। जिसके पार्ट को तुम बच्चे जानने के कारण पुरुषार्थ को सहज बनाए लेते हो, तो ये शंकर चाप रूपी जहाज है जिसका आधार लेने के कारण बुद्धि को ठिकाना मिलता है ना। तो बुद्धि को जब ठिकाना मिल जाता है परमानेंट, तो बुद्धि एक जगह एकाग्र हो जाती है। कब एकाग्र होगी? परमात्मा बाप को सर्वव्यापी समझने से एकाग्र होगी या एक व्यापी समझने से एकाग्र होगी? अगर ये बुद्धि में बैठ जाएगा कि वो सुप्रीम सोल परम पिता परमात्मा उस एक में आता है, जिस एक का तादात्म्य सुप्रीम सोल के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसकी निशानी है शिव शंकर को मिला के एक कर दिया है। 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता ऐसा है जिसको शिव के साथ मिला के एक कर दिया हो? है कोई देवता? ब्रह्मा को शिव के साथ मिला के एक किया? विष्णु को शिव के साथ मिला के एक किया? नहीं किया। शंकर को ही मिला के शिव के साथ एक क्यों कर दिया? जब शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शंकर का अर्थ है संहारकारी, दोनों के उल्टे उल्टे काम है। एक विष पीने वाला, एक अमृत पिलाने वाला। विष पीने वाला कौन? शिव। शिव तो विष पीता नहीं, वो तो पिलाता है अमृत। शंकर क्या करता है? चित्रों में क्या दिखाया है? चित्र किस बात की यादगार है? चरित्र की यादगार है ना। तो विष पीने वाला शंकर को दिखाया है। दोनों के कार्य इतने बिल्कुल भिन्न भिन्न, फिर दोनों को इकट्ठा कर दिया है। तो दोनों को इकट्ठा क्यों कर दिया? क्योंकि शंकर विश्वनाथ कहा जाता है। योग बल के आधार पर वो विश्व की बादशाही ले लेता है। योग बल से ही सारे विश्व का वाइब्रेशन परिवर्तित किया जा सकता है। जब वाइब्रेशन परिवर्तित हो जाएगा तो मनुष्य आत्मा स्वतः ही परिवर्तन होने लगे। लेकिन वाइब्रेशन को चेंज कौन कर सकेगा? जो परमात्मा बाप की श्रीमत पर चल करके पुरुषार्थ करेगा। अगर अपनी मन मत पर या कोई देहधारी गुरु की मत पर चल करके पुरुषार्थ करेंगे, जैसे अभी 2500 वर्ष से मनुष्य आत्माएं करती चली आई है, तो सफलता मिलने वाली नहीं है। तो बताया कि इस नैया